आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समय सार
समय साराए और क्या चकार चित्त भावाए भावाए सर्व भावांतर
के लिए दो बातें सामने आई हैं। एक तो गेय गायक शंकर दोष का परिहार होना चाहिए, तब निश्चय भक्ति होगी। और दूसरे उस भगत को जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को जीत लेना, तब वह निश्चय भक्ति सच्ची होगी। ये गायक शंकर दोष की बात कल कही कि माने सारा जगत और गायक माने अपना त्रिकालीध भगवान आत्मा, उन दोनों को भिन्न भिन्न जानना और जानकर अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करना, उसमें ही लीन होना, इसका नाम है गेय गायक शंकर दोष का परिहार। और जो गेय है उनको ही आत्मा जानना, उनमें ही अपनापन स्थापित करना, उनमें ही जमे रमे रहना, इसका नाम है गेय गायक शंकर दोष। दूसरी बात थी इंद्रियों को जीतना, तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ कोई तोड़ फोड़ करना नहीं है, तो क्या है कि उन इंद्रियों से भिन्न अपने आत्मा को जानना, यही इंद्रियों के जीतने का उपाय है। तो जैसा कि कल कहा था कि हमें सारी दुनिया को दो भागों में बांटना है, एक का नाम गायक और दूसरे का नाम गे गायक शंकर दोष दूर करना। तो इन इंद्रियों को किन में रखना, किस पार्टी में रखना, किसका साथी रखना, किसे कौरवों में रखना कि पांडवों में रखना, ये तो नक्की नहीं करना पड़ेगा ना कि शत्रु पक्ष वाले को अपन अपने पक्ष वाला मान ले तो हानि ही होने वाली है कि नहीं, कोई अंदर अंदर ही काट करता हो और फिर अपन उस पर अनुशासन की कार्रवाई करे और वो छोड़ के चला जाए। कांग्रेस ने किया ना जी अर्जुन सिंह के साथ, तो कुछ लोग के बहुत नुकसान हुआ, नहीं कुछ लोग कहते नहीं फायदा हुआ, क्योंकि अंदर अंदर काट करता था तो अंदर अंदर काट तो नहीं कर पाएगा ना। बोलो क्या है सही बात क्या है, अपन भी सोचे। राजनीति की बात मैं नहीं करता हूँ, न मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं तो सिर्फ उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि एक आदमी हो तो शत्रु पार्टी का, करे तो शत्रुता का व्यवहार और मुंह मिलाए रहे अपने से, वो ज्यादा खतरनाक है कि वो घोषित हो जाए कि हमारा विरोधी है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो ये इंद्रियां है तो शत्रु की पार्टी की, क्योंकि हमें इन्हें जीतना है। जीता तो शत्रुओं को जाता है ना, मित्रों को थोड़ी जीता जाता है। तो हमें जितेंद्री बनना है, इंद्रियों को जीतना है, तो ये हमारे शत्रु की पार्टी की हुई, तो हमसे मुंह मिलाए हैं, हमें नहीं अपनी समझ रहे हैं, तो उसका जो परिणाम होना चाहिए था कि हम अनंत काल से संसार में रख रहे वही हो रहा है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंद्रियां हमारी शत्रु थी अथवा शत्रु है। इंद्रियां माने शरीर, ये तो कल बता दिया है ना, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा मैं। तो ये हमारी शत्रु है क्योंकि इन्हें हमें जीतना है और हमने इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उन CID डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, हमने इनके जिम्मे कर रखा है। ये सारा ज्ञान का काम, जानने का काम एक इंद्रियों के सौंप रखा है। आंख ही देख के जो बताएगी हम वैसा ही मान लेंगे, इन कानों से सुन करके ही आत्मा को समझेंगे। अब ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हमने अपने शत्रु को सौंप रखा है। बोलो हमारी क्या दशा होनी चाहिए, अरे जो होना हो रही है वही होनी चाहिए। कोई आदमी बोले कि अपने हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा होशियार नहीं है जिसको CID डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सके, कोई होशियार आदमी मिले तो पाकिस्तान क्या क्या गड़बड़ी करता है वो सब अपन को पता लग सकता है ना। तो यहाँ कोई अच्छा नहीं है तो विदेश से बुला ले, क्या दिक्कत है। उस टिक्का खां था ना, सुना था नाम टिक्का खां का, बहुत होशियार आदमी है, रिटायर्ड हो गया है पाकिस्तान की सेना से, उसे अपन अपने इस डिपार्टमेंट का हेड बना दे। क्या भाई साहब ठीक रहेगा? यानी क्या बात करते हो? लेकिन वो होशियार बहुत है, लेकिन जिससे हमें लड़ना है, जिसके विरुद्ध जासूसी करना है, जो हमारे विरुद्ध जासूसी करता है उसको पकड़ना है, उसी देश के आदमी को हम हेड बना दें तो हमारी क्या दशा होगी? बोलो, लोक में तो हम ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसी गलती कर रखी है हमने। तो यहाँ तो कहते हैं कि हमें इंद्रियों को जीतना है, यानी इंद्रियों को हमने अपना शत्रु घोषित कर दिया है। जीता तो शत्रुओं को ही जाता है ना, और उनको ही अपना जानने देखने का डिपार्टमेंट सौंप रखा है। सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करेंगे। ये सबसे पहली सबसे बड़ी भूल है ना, यदि इंद्रियों को जीतना है तो सबसे पहले ये जानने देखने का डिपार्टमेंट इससे छीनना पड़ेगा। माने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्यों डॉक्टर साहब? अतीन्द्रिय ज्ञान जो सीधा आत्मा से हो, जिसमें कोई बीच में दूसरा आदमी नहीं हो, वो ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण का असली कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों में यहाँ तक लिख दिया कि इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए ना कोई ऐसा थोड़ी है कि इंद्रिय ज्ञान अलग होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान अलग होता है। ज्ञान तो अंदर में एक ही होता है। जब उसी ज्ञान को हम इंद्रियों के माध्यम से उपयोग में लाते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रियों में ज्ञान थोड़ी है, वो तो जड़ है, पुद्गल की बनी हुई है। देखो अपन ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा के जाने का नक्की किया, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं थी। साधारण नौकरी करते हैं, 1,000-2,000-3,000 रुपए महीने की। तो कहा ऐसा करो कि हर महीने 100 रुपया बैंक में जमा करते जाओ तीर्थ यात्रा के लिए, तो 2-3 साल में कोई इंतजाम हो जाएगा, तो अपन शिखर संवेद की यात्रा करके आएंगे। बोलो। तो अभी हम बोलते हैं कि पैसे की जरूरत है कि बैंक में पड़ा निकाल लो ना वो 3,000। नहीं, वो तो संदेश शिखर का है, वो तो यात्रा का पैसा है। पैसे में लिखा रहता है कि ये यात्रा का है। क्यों? माताओं बहनों को टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उसके लिए पैसा जोड़ती है। ये तो फ्रिज का पैसा, ये तो टीवी का पैसा है, इसको तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? पैसा फ्रिज का और टीवी का होता है, लेकिन उसके उद्देश्य से उसे इकट्ठा किया तो हम उसे कह देते हैं फ्रिज का पैसा, टीवी का पैसा, यात्रा का पैसा। जिस काम में हम उसका उपयोग लेना चाहते हैं उसे उसका कह देते हैं। वास्तव में थोड़ी कोई पैसा पे ऐसी सील लगी है कि तुम उसके शिखर जी का टिकट ही मिलेगा उस पैसा से, उस पैसे से तुम बाजार में दूसरी चीज खरीदो। क्यों? ऐसे ही अंदर से जब ज्ञान गुण में से ज्ञान पर्याय निकलती है तो उस पर इंद्रिय और अतिन्द्रिय की सील नहीं लगी रहती है, वो तो सिर्फ ज्ञान होता है। क्यों? और जब उसे इंद्रियों के माध्यम से ख्याल में है ना उपयोग में लाते हैं तो उस ज्ञान का नाम इंद्रिय पड़ जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि देखो साहब आपको टॉन्सिल हो गया है, बर्फ मत खाना और फ्रिज का पानी नहीं पीना। क्या बोलते ना? क्यों? फ्रिज का पानी नहीं पीना। तो अहमदाबाद में फ्रिज का पानी होता है? हमारे यहाँ तो कुएं का होता है, नल का होता है, तालाब का होता है, नदी का होता है। क्यों नहीं होता ना? लेकिन एक लिमिटेड समय को उसी पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो उसे फ्रिज का पानी कहने लगते हैं। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? आज चक्की का आटा, आटा तो गेहूं का होता है, मक्की का होता है, ज्वार का होता है। क्यों? आज चक्की का होता है। लेकिन ऐसे लोक में बहुत से पदार्थों के नाम दूसरों के संयोग के कारण पड़ते हैं, उनके संयोग में रहे तो उसका नाम उसके नाम पर रख दिया जाता है। ऐसे ये ज्ञान जब इंद्रियों के संयोग में आता है, इनके माध्यम से पास होता है, इनमें से पास होता है, तो उस ज्ञान का नाम रख दिया जाता है इंद्रिय ज्ञान। अब देखो इंद्रियों से पास में होने से ही ये ज्ञान की क्या दुर्दशा होती है, जरा विचार करना। इंद्रियों को जीतना है ना तो पहले उनका सही स्वरूप तो ख्याल में लेना पड़ेगा ना। क्यों? कि ये हमारे क्या है कि एक ज्ञान का स्वभाव तो आत्मा को जानना मुख्य है निश्चय से, और पर को जानना तो व्यवहार की बात है ना। लेकिन जब ये इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम करता है तो आत्मा को जानना बंद करके पर को ही जानने का काम करता है। तो कहते हैं ना, देखो हमारे बैंक में आप पैसा जमा कराओगे तो हम तुमको 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज देंगे, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि तुम उसे इस काम में उपयोग ले सकते हो, दूसरे काम में उपयोग नहीं ले सकते। बोलते ना, हम तुम्हें ब्याज बैंक देता तो मकान के लिए ब्याज देगा, अब मकान खरीदा तो तुम्हारे लिए कर्जा देगा, और तुम चाहोगे मकान के लिए ले आओ लड़की की शादी में खर्च कर दे, नहीं चलेगा। वो बैंक अपनी शर्त लगाता ना, क्यों लगाता है कि लड़की की शादी में खर्चा कर दोगे तो फिर दोगे कहां से, और यदि तुमने मकान लिया तो मकान की तो दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ने वाली है, तुम नहीं दोगे तो हम मकान से वसूल कर लेंगे, लेकिन लड़की की शादी में खर्च कर दिया तो जवाई से थोड़ी वसूल करेंगे। उस पैसे से तुम जवाई खरीदोगे तो हम नहीं देंगे बैंक कर्जा कहता है, मकान खरीदोगे तो कर्जा देंगे, क्योंकि मकान से वसूल किया जा सकता है, जवाई से वसूल नहीं किया जा सकता है। तो इंद्रियों ने भी एक शर्त लगाई कि हम तुम्हारे लिए ज्ञान में सहयोग तो करेंगे, सुनना, लेकिन तुम पुद्गल को जानोगे तो ही सहयोग करेंगे, आत्मा को जानने में हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। क्यों साहब? और हमें ठीक है साहब, सहयोग तो करोगे ना, उसी दिन हार गए कि नहीं हार गए? मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बात कहता हूँ, अमेरिका की कंपनियां आ रही है, हिंदुस्तान का रास्ता खोल दिया गया है, ठीक है, कोई वैसे बड़े बड़े काम है जो अपन नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े पुल हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बड़े बड़े प्लेन अपन नहीं चला सकते हैं, तो उनको बुलाएं, ठीक है, लेकिन कोका कोला पीने के लिए उनकी क्या जरूरत है? हमारे नल में से हमारा पानी भर के कुछ रंग बंग डाल डूल करके 2 रुपए 10 पैसे के पानी के 2 रुपया हमसे लेकर सारा पैसा विदेश ले जाए, इसकी क्या जरूरत है? क्या करना है? नहीं 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 साहब, वो पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, 50% ही लेंगे, फलाना उतना बाहर भेज देंगे, हमने ऐसी शर्तें लगा दी, वैसी शर्तें लगा दी, क्यों? ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ऐसे ही ये इंद्रियां ऐसी बात नहीं है, तुम्हें समय सार पढ़ने में सहयोग करेगी, आत्मा का भी हो गई ना बात, तुम्हारा पत्र सुनने में भी सहयोग करेंगे कान, तो आत्मा की बात हो गई ना, आत्मा को कैसे नहीं करेंगे, आत्मा को भी जानने में सहयोग करेंगे। धोखाधड़ी मत करो, इंद्रियों का तो स्वरूप ही ये है कि जो स्पर्श की ग्राहक है उसका नाम स्पर्शन इंद्रिय, जो सिर्फ रस के ज्ञान में निमित्त है उसका नाम रसना इंद्री, जो गंध के ज्ञान में निमित्त है उसका नाम घ्राण इंद्री, और जो रूप के ज्ञान में निमित्त है उसका नाम चक्षु इंद्री, जो शब्द के ज्ञान में निमित्त है उसका नाम कर्ण इंद्री। ख्याल में है ना, ये तो रूप रसगंध स्पर्श की ग्राहक है, और रूप रसगंध स्पर्श तो पुद्गल में होता है, आत्मा में होता ही नहीं है, तो ये इंद्रियां किसकी पार्टी की है? ये पुद्गल की पार्टी की है, ये देह की पार्टी की है, ये देह के अंग है, ये आत्मा के अंग नहीं है, एक गेय के अंग है, एक ज्ञायक के अंग नहीं है, चले शत्रु पक्ष के है नक्की कर, लेकिन गुरुजी द्रोणाचार्य ये तो हमारे गुरुजी है ना, क्यों? और इनका सबसे प्यारा शिष्य तो मैं हूँ अर्जुन, ये कौरवों के कैसे हो सकते हैं? बोलो कौरवों के हैं कि पांडवों के हैं द्रोणाचार्य? अब ये तो कौरवों की सेना के सेनापति हैं, तो बोलो तेरे गुरु है कि शत्रु है, क्या नक्की करना? अर्जुन तेरे को द्रोणाचार्य यदि गुरु दिखाई देते रहेंगे तो तूने जीत लिया, तेरी हार नक्की है। अब द्रोणाचार्य उनने तेरे को कितना ही सहयोग किया हो, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, कितना ही सहयोग किया हो, लेकिन अभी तो तेरे शत्रु ही हैं, ये मान के चलेगा तो युद्ध में जीतेगा। बोलो ये इंद्रियों ने तेरे को कितना ही सहयोग किया हो समय सार सुनने में और समय सार पढ़ने में, गुरुदेव के प्रतिन सुनने में, लेकिन तूने इन्हें सहयोगी माना तो बाजी हार जाएगा। यदि जीतना है तो पहले इंद्रियों को जीतना है ना, तो इंद्रियों में शत्रुत्व स्थापित करो, ये शत्रु है पहले ये स्वीकार करो। पहले के जमाने में राजा लोग इस बात का पता लगाने के लिए गुप्त बेस बनाकर निकलते थे कि हमारी सरकार के कर्मचारी जनता को परेशान तो नहीं करते हैं। किसान का बेस बना के राजा साहब जाकर किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते थे कि भैया मेरे भाई ने मुझे पीटा है, मेरे पड़ोसी ने मुझे मार दिया है, तुम रिपोर्ट लिखो। राजा हट, अभी नहीं ऐसे निकलता अभी। और ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि अभी थाने में रिपोर्ट चलाने की रेट लिखाने की रेट क्या चल रही है। और उनको थानेदारों को भी डर रहता था कि कभी कभी राजा ऐसा करता है तो ऐसा ना हो कि 10-5 रुपए में नौकरी चली जाए। और आज की गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कि सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान तो नहीं करते हैं, ये जानने की इच्छा हुई प्रधानमंत्री जी को है? तो उन्होंने फटाफट अपने IAS ऑफिसर को कहा, सचिव को कहा, सेक्रेटरी को कहा, पता लगाओ। तो उन्होंने जाकर के प्रांत के मुख्यमंत्रियों को कहा, मुख्यमंत्रियों ने अपने सचिवालय में कहा, उनने कलेक्टरों को कहा, कलेक्टरों ने SP को कहा, क्या से रिपोर्ट मंगाओ क्या। तो सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान तो नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट कैसी आएगी? क्योंकि जिनके विरुद्ध रिपोर्ट मंगानी है उन्हीं को ये काम सौंपा। अंत में रिपोर्ट आई, चौकीदार ने बना के दी, कहनी साहब ये तो बिल्कुल सेवा में लगे रहते हैं, ये जनता ही कर्मचारियों को बहुत परेशान करती है। और रिपोर्ट पहुंच गई लोकसभा में, प्रश्न का जवाब दे दिया कि नहीं नहीं पूरा पता लगाया है, कोई कर्मचारी जनता को परेशान नहीं करता है। कर्मचारियों के विरुद्ध जो रिपोर्ट आई वो कर्मचारियों ने दी, वो कितनी प्रमाणिक होगी सोचो बाबू जी। तो इंद्रियों के विरुद्ध जो रिपोर्ट मंगानी है इंद्रिय तेरी शत्रु है ना, इनके विरुद्ध रिपोर्ट इकट्ठी करनी है। और हमने इंद्रियों से कहा अच्छी तरह आंख से देख के पता लगाओ, कान सुनी बात पर भरोसा नहीं करना। तो मैंने देखा है अपनी आंख से देखा है, लेकिन अपनी आंख कहाँ है? आंख तो शत्रु की है भाई साहब, वो तो शत्रु पक्ष में है कि नहीं, वो तो कौरवों की पार्टी की है आंख, तो तेरी पार्टी की आंख है ही कहाँ। मैंने अपने गुरुजी से पता लगाया है द्रोणाचार्य जी से, लेकिन तेरे गुरुजी अब कहाँ हैं? वे तो अभी तेरे शत्रु ग्रुप में हैं, उनकी बात पर भरोसा मत करना नहीं तो मारा जाएगा। क्योंकि वे पहले ये नक्की करे कि इंद्रियां मेरी शत्रु है। सच बोलना छाती पर हाथ रखकर सब लोग कि हमने इंद्रियों को शत्रु माना है, क्यों? और पूरा ज्ञान का डिपार्टमेंट हमने इंद्रियों को नहीं सौंपा है क्या? और उनके पोषण करने में सारी जिंदगी बर्बाद की है कि नहीं की है? खाना पीना दवा दारू सुबह से लेके शाम तक उन्हीं इंद्रियों के पोषण में ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। और यहाँ बातें करते हैं कि हमें इंद्रियों को जीतना है। इसलिए आचार्य कहते पहली चोट में इंद्रियां तेरी पार्टी की नहीं है, गायक की पार्टी की नहीं है, ये की पार्टी की है। ये आंख जानने का काम नहीं करती है, ये आंख तो जानने में आती है। आंख तो गे है ना, गे माने जो जानने में आए, जैसे ये गे है, ये गे है, ये गे है, ऐसी मेरी आंख भी गे है, वो तो जानने लायक है। क्यों? वो जानने वाली नहीं है, वो जानने लायक है। इसका नाम है इंद्रियों को गे मानना, तब वो गे गायक शंकर दोष का परिहार होगा। इंद्रियों को ज्ञान का सहायक ज्ञायक मानते रहे तो गे ज्ञायक शंकर दोष का परिहार नहीं होगा और इंद्रियों को जीता नहीं जाएगा। देखो कल ही कहा था कि जीतने का मतलब किसी के साथ मारपीट करना नहीं है, इंद्रियों के साथ तोड़फोड़ करना नहीं है, तो क्या है? उनसे काम लेना बंद करना है। हम क्या समझते हैं? ये हमारा नौकर है, हम इसके मालिक है। नौकर समझता है कि हम मालिक है, ये नौकर है, क्यों? हमारे बिना इनका चलता नहीं है, तो इनके बिना हमारा तो खूब चलता है। सेठ जी के यहाँ से नौकरी छोड़ के जाएंगे तो कहीं भी मजदूरी करके जितना सेठ जी देते उतना तो कमाई खाएंगे, लेकिन सेठ जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सेठ जी की एक कमजोरी नौकर जानता है तो बाद में आकर ना क्या सही आगे नहीं, ये गिलास पानी अपने हाथ से उठा के नहीं पी सकते है। ए रामू ए स्वामी सब मर गए क्या, कोई यहाँ नहीं है? घंटे घर तक सेठ जी प्यासे बैठे हैं लेकिन एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकते हैं, क्यों? कथुड़ी के लिए हाथ रह गए हैं, हाथों में तो बहुत ताकत है, फिर क्यों? कोई ने देख लिया तो कि सेठ जी अपने हाथ से गिलास से पानी पी रहे हैं। सच बोलना हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वजन कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथ से नहीं ले जा सकते, ले जा सकते, लेकिन सवाल ये है कि कोई ने देख लिया तो कि पंडित जी अपने हाथ से बिस्तर उठा के ले जा रहे हैं। कम कुली के अधीन हो गए, इस इज्जत को एक तरफ फेंको तो एक सेकंड में स्वाधीन हो सकते हैं। इंद्रियों के बिना हमारा काम नहीं चलता, नौकरों के बिना हमारा काम नहीं चलता, कुली के बिना हमारा काम नहीं चलता, ये इंद्रियाधीनता है। यही पराधीनता है और इंद्रियों के बिना हमारा काम चल जाए यही स्वाधीनता है। और हमारा काम क्या है? जानने देखने का, जानने देखने का काम है ना। भगवान आत्मा तो बिना इंद्रियों के ही जानने देखने में आता है। और मान लीजिए हमारे ज्ञान के क्षोभ में जो कमजोरी है, पर पदार्थ इंद्रियों के बिना जानने देखने में नहीं भी आवे तो हमें क्या करना है उन्हें जानकर देख करके? उससे क्या निहाल होने वाले हैं हम? उससे हमारा क्या लाभ होने वाला है? अनादिकाल से आज तक पर को जाना, लेकिन रंत मात्र भी दुख कम हुआ नहीं। अब कब तक ये पर को जानने का धंधा करते रहोगे बाबू भाई? अभी तो अपने जानने की बात करो ना। क्यों हमें चंद्राचार्य के गे लुब्धा नाम हे गे के लोभियो, तुम्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। तुम ज्ञायक का ज्ञान कैसे हो क्योंकि तुम तो गे में लुब्ध हो। तो हमें इंद्रियों से नहीं जानना, भले ही जानना बंद हो जाए लेकिन इंद्रियों से नहीं जानना। देखो इसको ऐसा समझो कि हम रेलवे स्टेशन पर गए और हमारे पास इतना सामान है कि कुलियों ने ये समझ लिया कि सेठ जी खुद उठा के तो ले ही नहीं जा सकते, तो 25 रुपए का काम हो तो 250 रुपए। अब गए भैया ने क्या बात करता है, तुम ऐसी बात करता है, उठा उठा चल दे देंगे, जो कहेगा देंगे कल। नहीं नहीं बाबू सेठ जी पहले नक्की करो, 250 रुपए से कम नहीं लूंगा, 249 नहीं चलेंगे। अरे क्या बात करता है, अभी कोई लूट बची है? चल 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 क्योंकि उसने हाथ लगा दिया है तुम्हारे सामान को, अब दूसरा कुली आने वाला नहीं है। वो जानता है तुम्हारी गाड़ी 10 मिनट में छूटने वाली है, तुम्हारी ताकत है नहीं कि उठा के लेके जाओगे। अकड़ता है कि नहीं अकड़ता है? अब जरा समझना। अच्छा तुम्हें नहीं लगा कि नहीं लगा? ठीक है, उसी वक्त आपने क्या किया, एक इधर खाया, एक इधर रखा, एक इधर रखा और चलने लगे 10 कदम चले अपना सामान लेकर। अरे सर जी, अरे सर जी, आप जो समझो सो दे देना, आप जो समझो सो दे देना, मैं 25 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा, लोन लेना का नहीं लेना है। अरे साहब 50 देना, 250 से एकदम 50 ज्यादा। और 4 कदम और चलो तो 25 में ही छीन लेता है तुमसे, और तुम नहीं चल पाए उठाकर तो 250 से कम नहीं लगेंगे। अब जरा समझना क्या है, जब आपने देखा कि 250 से कम तो ये लेगा नहीं और मेरी ताकत ले जाने की है नहीं और गाड़ी चूक जाएगी, चला चल सा, पुली ने अपने माथे पर सामान रखा, समझना, और आप चल रहे हैं, लेकिन कौन जीता कौन हारा, दिखने को तो सामान माथे पर कुली के और आप अगर दादा चल 250 लेना, तू समझता क्या, लेकिन अंदर में तुम समझ रहे हैं कि हमारी ऐसी हार हुई है जैसी कभी दुनिया में कभी हुई है ना होगी। समझते कि नहीं समझते? और कुली अपने माथे पर बोझा लिए है फिर भी समझता मैं जीत गया, समझता कि नहीं समझता? करो बोझा तो उसी के माथे पर है लेकिन उसमें वो अपनी जीत समझता, हम हार, और यदि वो हम लेके चल दे तो बोझा हमारे माथे पर है लेकिन हम अपनी जीत समझते हैं और वो समझता अपनी हार। नहीं नहीं बाबूजी बाबूजी नहीं, अब मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, अब तो मैं ही ले जाऊंगा। क्यों तो वो समझता मैंने बेकार 25 रुपए खो दिए, ऐसी अच्छी मजदूरी मिली थी, वो हार महसूस करता है नहीं? तो बोलो हारने और जीतने का अर्थ क्या? हम दूसरे के बिना अपना काम चला ले तो हम जीते और दूसरों के बिना हमारा काम नहीं चले तो हम हार गए। तो इंद्रियों के बिना हम अपना काम चला ले तो हम जीते तो इंद्रियां हार गई, और इंद्रियों के बिना हमारा काम नहीं चले तो हम हार गए और इंद्रियां जीत गई। बोलो अब इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना है? जयंती भाई तुम्हारे पर्चे का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इनसे काम लेना बंद करो। अरे शत्रुओं से कहीं काम लिया जाता है? शत्रु को अपने रसोई घर के डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, गजब हो गया। आपको मालूम है राजा नंद था कहाँ का? मगध का राजा नंदगुप्त चाणक्य ने जिसे मारा था, तो सम्राट बने थे ना, बहुत बड़ा राज्य था उसका, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य था। एक मिनिस्टर से कोई गलती हो गई, वो नाराज हो गया तो उसने सारे परिवार को मिनिस्टर को कैद में डाल दिया, बिल्कुल तह खाने में अंधेरे में। 10 आदमी थे और खाने को एक आदमी का पेट भरे इतना भोजन देता था, तो अंदर में 10 आदमी ने बैठ के तय किया कि अपन 10 ही आदमी ये खाना खाएंगे तो 10-5 दिन में 10 ही मर जाएंगे, इसलिए इस खाने को एक आदमी ही खाए और 9 जरा 2 दिन पहले मरेंगे लेकिन एक आदमी जिंदा रहे। लेकिन वो कौन आदमी जिंदा रहे? जो कभी चांस से छूट जाए तो राजा से बदला ले सके, तो वो आदमी को जिंदा रहना चाहिए। तो सबने कहा कि देखो पिताजी साहब मिनिस्टर से आप ही रहो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप राजा के मंत्री थे, आपने इतनी बुद्धि है
आप बचे रहे तो बदला ले सकते हो। आखिरकार वो एक मंत्री बचा रहा। कोई ऐसी समस्या आई राज दरबार में कि लोगों ने कहा कि फला मंत्री के अलावा कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता है, तो कहा बोलो तहखाने में बंद है कि बुलाओ। तहखाने में बुलाया गया, उस समस्या का समाधान उनने कर दिया तो उनको छोड़ दिया गया, दोबारा नौकरी में रख लिया गया। लेकिन दूसरे मंत्रियों ने कहा कि क्या कर रहे हो, इसको तुमने इतने दिन जेल में रखा, वो तुम्हारा पक्का शत्रु बन के निकला है, अब वो मित्र नहीं रहा, इसलिए इसको मत रखो नौकरी पे। कि नहीं साहब, उसने बढ़िया काम किया है, पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा। ऐसा डिपार्टमेंट दे दो ना कि जो किसी जिसमें कुछ कर ही नहीं सके, तो उसे रसोई घर का हेड बना दिया। इतिहास की कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नया डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, जो मिनिस्टर था रसोई घर का हेड बना दिया। अब वो सोचे कि मैं बदला कैसे लूं, बदला कैसे लूं, बदला कैसे लूं। बाबूजी वहां तो कुछ कर नहीं सकता था, फिर जहर में तो मिला नहीं सकता था। वो रास्ते में जाता था तो चाणक्य दिखाई दिया उसे। चाणक्य क्या कर रहा था मालूम आपको? एक बबूल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया, उसकी जड़ें निकाली, और जो गड्ढा था उस गड्ढे में नमक और छाछ डाल रहा था। कि क्या कर रहे हो? इस बबूल के पेड़ का कांटा मेरे पैर में लग गया, तो मैंने सोचा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, कांटे को उखाड़ने से क्या होता, बबूल को उखाड़ो। बबूल को काट के फेंक दिया, लेकिन जड़ रहेगी तो द्वारा पनप जाएगा, तो जड़े भी काट के निकाल के फेंकी। अब ये छाछ और नमक क्यों डाल रहा? कहीं कोई जड़ रह गई हो तो वो न पनप जाए। इस आदमी की राजा नंद से शत्रुता करा दूं तो मेरा काम यही निपटा देगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये उसकी समझ में आई। उसने कहा आइए 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 आइए, स्वागत कर कर आकर अपने पास ले गया। मैं देखो यहाँ का रसोई घर का हेड हूँ, आज आपका निमंत्रण है, आप मेरे साथ भोजन वहीं करेंगे। खूब सम्मान के साथ भोजन करने के लिए ले आया। वहाँ राजा नंद के यहाँ 100 सिंहासन थे, बैठ कर खाना खाए, 10 सिंहासन थे सोने के और 90 थे चांदी के, बाकी तो और ऐसे होंगे जैसे होंगे। तो नौ राजा नौ भाई थे नंद, तो नौ सोने के सिंहासनों पर राजा नंद के नौ भाई बैठते थे। एक पर सर्वश्रेष्ठ विद्वान देश का, वो दसवें सिंहासन पर भोजन के लिए बैठता था सोने के पे, बाकी सब तो उस दसवें सिंहासन पर जाके चाणक्य को उसने भोजन करने के लिए बैठा दिया। चाणक्य को छोकरा था नई उम्र का, तो वो आया राजा नंद, एकदम गुस्से में बोला, उसमें ऐसा संस्कृत में शब्द आता है, अजात शत्रु जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं हो गए हैं, ऐसे इस बालक को सर्वश्रेष्ठ विद्वान के आसन पर इस मूर्ख ने बैठाया, ये कैसे बैठा, हटो यहां से। उसका अपमान चाणक्य का, वो कैसे बैठ गया इस पर, बड़ा गुस्सा आया। तब वो बोला कि दाढ़ी मूछ से कोई विद्वान होता है? यदि तुम्हें दाढ़ी मूछ वाले विद्वान चाहिए तो बकरों की कमी नहीं है, दो चार बकरे लाके अपने राज दरबार में खड़े कर लो। दाढ़ी मूछ तो बकरों की भी होती है। यदि तुम्हारी सभा में कोई मेरे टक्कर का विद्वान हो तो आकर मेरे से बात बात करके देख ले, खाना बाद में खाऊंगा। में है ना, दाढ़ी मूछ होने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा तो बहुत अभिमानी भी है, धक्का मार के निकालो। तो उसको धक्का मार के निकाला उसे। उसने वही चोटी की गांठ खोल के प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का उन्मूलन नहीं कर दूंगा चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। अरे उसका काम हो गया। समझ आ गया? क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कह करके, भाई जब तक तुमने शत्रु मित्र का नक्की नहीं किया है और उसे जड़ मूल से उखाड़ने के लिए चोटी की गांठ नहीं खोली है, तब तक ये काम होगा नहीं। पता ही नहीं शत्रु कौन है और मित्र कौन है। जिन इंद्रियों को जीतना है उन इंद्रियों को तुमने अपना ज्ञान का सहायक मित्र मान रखा है, इसलिए इनसे काम नहीं लेना, शत्रु से काम नहीं लेना। राजा नंद ने क्या गलती की थी? जो शत्रु था ना, वो मंत्री बनाया था जिसको, उसको काम लिया तो ये खतरा खड़ा हुआ। इंद्रियां हमारी शत्रु है ना, इनसे काम लेने में ही खतरा है, क्योंकि जब तक तुम आंख कान से देखते सुनते रहोगे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव कब होगा? जब इनके गजानना देखना बंद होगा। अनुभूति के काल में इंद्री ज्ञान नहीं रहता ना, ज्ञान अतिंद्री हो जाता है ना। अरे ज्ञान तो वो ही है जो आत्मा को जानने लगे तो उसे का नाम अतिंद्री, क्योंकि आत्मा को इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाता है। तो इंद्रियों के जीतने का उपाय क्या हुआ? काम नहीं लेना। पुली को जीतना हो उसका उपाय क्या है? अपना सामान अपने कंधे पर लेके चलो। मार तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, ये कोई उपाय नहीं है। ये तो शांति का मार्ग है कि नहीं? तो पहले इंद्रियों में ये नक्की करें कि इंद्रियों को हमें जीतना है, ये हमारी पार्टी की नहीं है। कौन सी पार्टी की है? हमारी पार्टी कौन सी है?
कांग्रेस। जाए।
और इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। ये समझेंगे ना, भगवान आत्मा की पार्टी है ज्ञायक, और इंद्रियों की पार्टी कौन है? और इन दोनों में भेद सेल मत करो, खिचड़ा मत करो, दोनों को अलग अलग समझो। उनको भेद सेल करना, उसका नाम है ये ज्ञायक संकर दोष, और उन्हें जुदा जानकर अपने आत्मा में जमना रमना, उसका नाम है गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार। और ऐसा ही करने से इंद्रियों को जीता जाता है, और ऐसा करने वाला ही भगवान का नंबर एक का नंबर एक। मैंने घबराना नहीं कि तुम्हारा पैसे वाला नंबर एक दो नहीं है। निश्चय स्तुति तीन प्रकार की होती है। पहली जिसे बोलते जितेंद्रिय जिन, दूसरी जिते बोलते हैं जितमोह, और तीसरी जिसे बोलते हैं छीण मोह। उसमें इसलिए मैं पहले नंबर का कहता हूँ, पहले नंबर का निश्चय भगत है वो। लाइट बंद कर दो ना, क्या जरूरत लाइट होगी, पूरी लाइट ही बंद कर दो। अभी सब मत बोलो, अब ख्याल में आ गया है वो बिजली वाले जो करना होगा करेंगे। आप लोग बिल्कुल शांत, आप पर वज्र गिरने वाला नहीं है। उसमें तो चौक जल गया है, उसमें धुआं निकला करता है। निकलने दो, निकलेगा तो जो कुछ होगा हो जाए। कड़प रखी रह गई, एक मिनट में शंका उपयोग चला गया। 40 मिनट की मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। अब अपने उपयोग को यहाँ केंद्रित करो भाई साहब, ये विषय बहुत कठिन है। ये मैं बहुत सरल करके बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा पूरा उपयोग इधर लगाने का, तब तक मेरी भी ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा दूं। आप उपयोग को केंद्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो ही मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूँ। फिर अब उपयोग को फिर समेट के इधर ले आओ। अब देखो, एक बात नक्की हो गई, इंद्रिया हमारी शत्रु है, ये गे की पार्टी की है, उन्हें हमें जीतना है। इतना नक्की हो गया। अब इंद्री कहते किसे है? अरे भी आप हमें बताओगे, ये तो बाल बाल पाठमाला एक दो तीन में हमने पढ़ ली है। नहीं भैया, वो तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी। समय सार की पढ़ाई कोई अद्भुत है, उसके हर शब्द का कोई नया अर्थ होता है। शरीर जिन्हें हम कहते हैं, दो दिन से अपन इनकी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी, इन आंख कान नाक के माध्यम से जो क्षयोपशम ज्ञान देखने का काम करता है, उसका नाम भी भावेंद्रिय है। ये तो द्रव्य इंद्रिया है, लेकिन आत्मा में जो ज्ञान का क्षयोपशम है और पर को इंद्रिय रूप रस गंध को जानने का राग है, इनको भावेंद्रिय बोलते हैं। कहते हैं ना, तो वो भी इंद्रिय है और वो भी ज्ञेय है, और वो उन्हें भी अपनी पार्टी में नहीं रखना। क्या कह रहे? कि जो क्षयोपशम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ को जानने का काम करे, वो ज्ञान भी हमारी पार्टी का नहीं, वो ये की पार्टी का है।
ठीक है कि नहीं?
जरा एक कल्पना करो, कर्ण जो है ना, कर्ण वो तो अर्जुन का सगा बड़ा भाई था ना, तो उसे तो अपना मान लेना बड़ा भाई है। अपना सगा भाई भी दुर्योधन की पार्टी में चला जाए तो वो अपना नहीं है, शत्रु है।
नक्की करना पड़ेगा,
क्योंकि ऐसे तो बहुत रिश्तेदार इधर के उधर चले गए ना। आखिर कौरव और पांडव जब भाई थे चटेरे, तो उनके रिश्तेदार भी तो दोनों के कॉमन ही होंगे कि नहीं? तो कुछ इस तरफ गए, कुछ इस तरफ गए, तो उधर के वाले भी तो सब रिश्तेदार ही है कि नहीं? क्यों बाबू जी, अब क्या करना है उसको? देखो भाई, बहुत सावधानी की बात है। जैसे कैंसर हो जाता है ना, कैंसर या उंगली में कैंसर हुआ, तो डॉक्टर कहता उंगली काट के फेंक दो। अरे साहब, उंगली कैसे काटूं? उंगली काटते हो क्या? नहीं, कल आओगे तो हाथ काटना पड़ेगा। यहाँ से कि मैं घर वालों से पूछ लूं कि पूछ के आओगे तो यहाँ से काटना पड़ेगा, और उसके बाद देर की तो मरना पड़ेगा, काटने से भी काम चलेगा नहीं। क्यों? यहाँ कैंसर हो तो यहाँ से काट के फेंक देना, जोखिम नहीं लेना। इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ गया होगा तो सारे शरीर में फैल जाएगा। करते कि नहीं करते? तो यहाँ भी कंजूसी मत करना, वे अपना क्षयोपशम ज्ञान इंद्रियों की पार्टी में गया, उसी वक्त काट के फेंक देना। समझाने की कोशिश मत करना। जो साहब, मुझे आगे पाकिस्तान से मिल गया, शत्रु से मिल गया अपना मित्र, तो समझा के प्रेम से लाना। चलो बाबू भाई, लाना भैया, तुम लौट के आ जा हमारे पक्ष में। पागलपन मत करना, एक सेकंड में निकाल देना, बोलो। अरे रावण की सभा में बैठ के राम का पक्ष ले, ऐसा विभीषण रावण का भाई नहीं, राम की पार्टी का है, निकाल के बाहर करना। क्यों? क्योंकि अंदर रह के ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है, अंदर का आदमी बाहर जाएगा तो भी कम तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अंदर रह के तो और ज्यादा पहुंचाएगा। सूक्ष्म ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से पर को जानने का काम करे, उसका नाम भी इंद्री, और वो भी मैं नहीं, उसे भी जीतना। जीतने की बात तो बाद की है, पहले ये तो ध्यान कि ये मैं नहीं, इसी का नाम जीतना है। इसके अलावा और क्या जीतना है, बोलो। हाँ, इसके अलावा कोई और जीतना, कुछ काम करना ही नहीं है। पर ये माना कि हम जन्म बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार, अपने चित्त की गद्दी से उतार देना कि ये मैं नहीं, इससे बड़ा दंड कोई जगत में है ही नहीं। ख्याल में आएगा ना, ऐसा कुंद आचार्य देव ही कह सकते हैं। अपनी ज्ञान की पर्याय, वो इंद्री तो सहायक थी, पुद्गल की पर्याय थी, ये तो अपने आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है कि नहीं। इसको भी पुद्गल, राग को तो पुद्गल कहा ही था, क्यों? राग को तो 2500 जगह जीवाधिकार में कह दिया, कई जगह कहा तो नहीं कहो, राग तो पुद्गल है ही, अब भी आत्मा की पर्याय है। लेकिन अब तो ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान गुण की पर्याय, उसकी क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, बोलो। अपनी लड़की किसी के गले में बरमाला डाल दे तो उसे अपने घर में रखना कि नहीं रखना, बोलो बोलो पंकज वाली। अब लड़की की भलाई भी इसमें है और तुम्हारी भी भलाई इसमें है कि उसके साथ ही उसे विदा कर दो, और थोड़ा बहन महेज देना हो तो दे दो, लेकिन अपने घर में नहीं। वो साहब अलग बात है, अपनी राजी से गई हो तो क्यों, दे राजी जाए तो नहीं रखना, लेकिन अपनी राजी से जाए तो, बोलो भाई साहब, तो भी नहीं रखना। बाकी तो यही है, कभी कभी मेहमान के तौर पर आ जाए वो अलग बात है, हमारी है भाई साहब। लड़की जिसके यहाँ पैदा होती उसकी नहीं होती, वो जिसके गले में बरमाला डालती है उसकी होती है, उसके चित्त में जो बसा है वो उसकी है, किसी है। तो ऐसे ही कहते हैं, पुद्गल को जानने वाला ज्ञान भी पुद्गल का, उसी की पार्टी में जा। तुझे वही पसंद है ना, तूने उसको ही जाना है, अपने आत्मा को जानना तेरे को पसंद नहीं है ना, क्या वही पसंद है तो उसी की पार्टी में रखना, अपनी पार्टी में नहीं रखना। साहब कठिन निर्णय है, अपनी सगी लड़की को 18 वर्ष तक पाला पोसा है, लड़के जैसा किया है, ये सब किया है, आप कैसी बात करते हो। बोले तो क्या करो, अपने घर में रखोगे? अरे तुम तो रखोगे, लेकिन वो रहेगी जब रखोगे। उसने बहुत सोच समझ के किसी के गले में बरमाला डाली है, वो नहीं जानती थी इस आदमी के गले में बरमाला डालने का मतलब ये है कि बाप दादों के घर को छोड़ना, क्यों? उसने बहुत सोच समझ के किया है। तो जिस ज्ञान पर्याय ने जिसको जाना वो उसकी, मेरी नहीं, जा जहाँ जाना तू, तू उस पर रींद गई ना, तू उस पर ही जम गई ना। अरे आत्मा को जानने का काम क्या कम था, तो तू यहाँ नहीं जानी वहाँ जानने गई क्या? मेरे घर में तो 5,000 रुपए महीने के 10 मुनीम है, और ये मेरा बेटा 3,000 रुपए महीने की उनके यहाँ नौकरी करता है, बहुत तकलीफ होती है क्या? नहीं, मेरी तो नाक कट गई। क्या हो गया तेरी नाक? तो दिक्कत ही कट गई। मेरे यहाँ 10,000 रुपए महीने के मुनीम, मेरा बेटा दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, मेरा बेटा ही नहीं, लोग में तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ही नहीं, मैं उसको बिल्कुल अपनी बसियत में उसका नाम तक नहीं लिखूंगा। क्या बोलता कि नहीं बोलते? ऐसे ही जिस ज्ञान पर्याय ने आत्मा को जानने का काम न करके दूसरा में समर्पण किया, आचार्य कहते उस ज्ञान पर्याय को भी तू ज्ञान में शामिल मत मान, ज्ञे में शामिल मान। उसका नाम है भावेंद्री, और भावेंद्री भी इंद्री की पार्टी की है, आत्मा की पार्टी की नहीं, और इंद्रियां आत्मा की शत्रु है क्योंकि उन्हें जीतना है। भाई ये ऐसी बात दिगंबर धर्म में ही प्राप्त होगी, कुंद कुंद की वाणी जैसे समर्थ आचार्य अमृतचंद आचार्य को ही प्राप्त होगी, और कहीं दूसरी जगह ये बात आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी। गुरुदेव की भाषा में बात करें तो काने पढ़ना दुर्लभ है, काने पढ़ना दुर्लभ है। ये तो हम महाभाग्यशाली थे, न मालूम कौन कौन भवों का हमारा पुण्य था जिससे हमारे को इस भव में हमारे कान में ये बात पड़ गई। साथ ही साथ पुण्य का उदय था डॉक्टर साहब, नहीं तो ऐसी बात, ये शास्त्र तो अपना ही था, दिगंबरों का ही था, लेकिन अलवारियों में बंद था, कोई पढ़ते भी थे तो उसका भाव ख्याल में किसी को आता ही नहीं था। एक क्या हाँ, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना, और क्या इंद्रियों को जीतना, मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तीन दिन का उपवास छोड़ देना, पानी नहीं पिलाना, शरीर को सुखाना, बस उसको इंद्रियों को जीतना मान लिया था। तो 10 दिन का उपवास, 15 दिन का उपवास, हम इंद्रियों को जीत रहे हैं। 10-10 डॉक्टर लग रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर देख रहा है, वो कोई क्या क्या देखते हैं, 10-10 डॉक्टर, एक ब्लड प्रेशर देखता है, एक हार्ट का चेकअप करता है, एक करता है, कितना हो गया, इतना क्या हो गया, कितना। अरे तू अभी छोड़ ही दिया खाना, नाटक काहे को घूम रहा है, चेकअप की जरूरत क्या है, क्योंकि ये भी डर लग रहा है छूट ना जाए, फटाफट क्या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इसका उपयोग तो होना चाहिए ना, क्या के लिए होना चाहिए, क्यों करना, तेरे देह से इतना ही राग है, क्यों क्या वो कोई मामला बिगड़ने जाए तो काय को करता है, नहीं वो रिकॉर्ड बन जाता है ना, अच्छा रहता है, जरा रिकॉर्ड भी बनना है, देह भी नहीं छूट जाए, अरे इतने आडम्बर से तो अच्छा है, दो रोटी खा ले, पंडित से ज्यादा किसी की बात नहीं, अपनी खुद की बात है, हमारे यहाँ दिगंबर समाज में बहुत ऐसा होता है, उसकी बात है, भी आपके गुजरात की बात नहीं है, बस उसका स्वरूप है, हम क्या करें, है ना, गुरुदेव के प्रताप से ये बात अपने कान में पड़ गई और उसका हमने प्रणमन नहीं किया, अपने जीवन में उसका लाभ नहीं लिया, तो कान में पड़ी और नहीं पड़ी दोनों एक सी है, क्या फायदा हुआ, हम उससे भी ज्यादा अभागे हो जाएंगे, क्योंकि उसका लाभ अभी हमने नहीं लिया, क्यों कई विकल्पों में उलझे रहे, खाने में, कमाने में, धंधे में, पानी में, धर्म के क्षेत्र में आए तो वहाँ भी कुछ न कुछ चुको चुको झगड़ा टंटा, किसी न किसी मामले में पलझे रहे, अपना समय जीवन खराब किया, तो क्या लाभ है उसका विचार का, समय सार की इन गहरी बातों को समझने के लिए बहुत निरापद उपयोग चाहिए, कि दुनिया की झंझटें माथे पे लेकर इसमें आकर के भाई ये काम नहीं होने वाला है, तो ये साधारण बात थोड़ी है, ये सूक्ष्म बात है, इसको उपयोग को भी सूक्ष्म करके इसमें लगाना पड़ेगा, भाई लाल भाई सब काम होगा, ऐसे काम होने वाला नहीं है, देखो अब क्या कहते हैं, देखो अभी समय हो गया तो मैं शाम के व्याख्यान में और विस्तार से लूंगा, थोड़ा संकेत करता हूँ, तो दो बातें हुई, एक तो ये आँख कान नाक ये तो इंद्रियां हैं ही, तो इनके माध्यम से जो जानने देखने का काम करता है वो उपयोग ज्ञान का संयोगसम, वो भी भाव इंद्री से इंद्री है, वो भी शत्रु की पार्टी है, इतना तो तत्वार्थ सूत्र में भी मिलता है, तो द्रव इंद्रियो भाव इंद्रिया ना लब्ध उपयोग भाव इंद्रियम, पाया कहीं पड़ा तत्वा सूत्र, निर्वृत्ति उपकरण द्रव्य इंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्री कहते हैं, तो भाव इंद्रिय शब्द तो तत्वार्थ सूत्र में भी आता है, लेकिन ये समय सार में एक तीसरी बात और है, कि इंद्रियों के विषय भूत पदार्थ वो भी इंद्रिय, ये क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, अब इंद्रिय का कितना बड़ा विस्तार हो गया, आँख का ना जो क्या कहते ए आँख, ये आँख ये तो इंद्री है ही, इस आँख से जो जानने की क्षमता है उसका नाम भी इंद्री, और आँख से जो दिखाई दे रहा है उसका नाम भी इंद्री, ये कहाँ मिलेगा, बोलो बोलो कौन से सारे शास्त्रों में से निकाल के बताओ किस धर्म में कहाँ मिला, इसमें इसकी बात मैं शाम को बहुत विस्तार से करूंगा, क्योंकि इसमें कम से कम 15-20 मिनट चाहिए, तब ये बात खुलासा होगी, कौन सी, इतना याद रखना सोच के आना कि तीसरा क्या चक्कर है, कौन ये आँख कान नाक तो इंद्रियां हैं जिन्हें जीतना है, इनके माध्यम से जो छोटू ज्ञान जानता है वो भी इंद्री, और इनसे जो पदार्थ जानने में आते हैं उनका नाम भी इंद्री, और इन तीनों को जीतना माने ये मेरे से जुड़े हैं ऐसा मानकर अपने आत्मा में उपयोग को ले जाना, इसका नाम जितेंद्री जिन है।